डॉक्टर प्रदीप तनेजा जी नमस्कार।
नमस्कार अनिता जी।
प्रदीप जी, हमारे प्रधानमंत्री जापान यात्रा के दौरान टोक्यो के मिलिट्री बेस पर गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि कोई ऐसा समझौता होगा जिससे कोई 76 वर्षों के बाद जापान सैनिक ट्रेनिंग ऑस्ट्रेलिया में कर सकेगा।
जी, प्रधानमंत्री टर्नबुल की जो जापान यात्रा है इस बार
जी,
ये एक वार्षिक ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में नेताओं के प्रधानमंत्रियों के आदान प्रदान का एक हिस्सा है। तो पिछले साल जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे यहाँ आए थे ऑस्ट्रेलिया, और इस बार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं। तो इस यात्रा के दौरान वहाँ दो मुद्दों पर खासतौर से ध्यान दिया जा रहा है। एक है व्यापार से संबंधित
जी,
और दूसरा है सुरक्षा के मामलों से संबंधित। तो आज सुबह जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री टर्नबुल टोक्यो के नजदीक एक वहाँ के जापानी सेना के एक फौजी अड्डे में घूमने गए थे वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ, तो वो मानी हुई बात है, सुरक्षा से संबंधित आदान प्रदान हुआ है। वहाँ ऑस्ट्रेलिया का बना हुआ एक बख्तरबंद गाड़ी होती है जिसको मतलब आर्मर्ड व्हीकल बोलते हैं, बुश मास्टर है, तो वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हमारे यहाँ विक्टोरिया में ही बेंडिगो में बनता है। तो जापान ने 4 ये वाहन ऑस्ट्रेलिया से पहले खरीदे हैं और भी खरीदने का ऑर्डर दिया हुआ है। तो दोनों प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टर्नबुल, दोनों उस गाड़ी के अंदर भी गए, देखा। तो वो ये सब दिखाने का एक थोड़ा सिंबॉलिक वैल्यू होती है कि दोनों देशों के बीच में जो सुरक्षा मामलों से जो रिलेटेड डेवलपमेंट्स है, जो विकास हो रहा है वो चल रहा है धीरे धीरे। सुना जाता है कि दोनों देशों के बीच में एक समझौते की भी बात चल रही है, जिस पर कि प्रधानमंत्री टर्नबुल अपने जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के शिंजो आबे से भी बातचीत कर रहे हैं। वो समझौता इसलिए करा जा रहा है कि जापान की सेना ऑस्ट्रेलिया में, हमारे यहाँ डार्विन में, जहाँ की पहले ही अमरीकी सेनाएं यहाँ प्रशिक्षण लेती हैं और अपना अभ्यास भी करती हैं, तो जापानी सेनाएं भी यहाँ आकर उसी तरह से प्रशिक्षण और अभ्यास कर सकेंगी, और ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं भी जापान में जाके जो जापानी फौजी अड्डे हैं वहाँ पर भी अभ्यास कर सकेंगी। तो ये अभी तक नहीं होता है। आपने जैसे कहा 76 साल पहले जापान की सेना ने दूसरे विश्व युद्ध में डार्विन के ऊपर हमला किया था। तो ये अगर जापान के जो सैनिक हैं यहाँ डार्विन में आके प्रशिक्षण करते हैं या अभ्यास करते हैं, तो ये पहली बार ऐसा होगा उस युद्ध के बाद से कि जापानी सेना यहाँ आकर प्रशिक्षण करेगी।
जी, तो जब हम सैनिक शक्ति की बात करते हैं तो क्या कहीं ये अर्थ निकल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ईस्ट चाइना सी में जापान और चीन के बीच विवादित द्वीप को लेकर ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ है?
देखिए, जापान ये मानता है कि ऑस्ट्रेलिया जापान का एक तरह से सेमी एलाय है, मतलब पूरा तो एलाय नहीं है जैसे कि जापान और अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका है, लेकिन जापान में ये माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया एक तरह से जापान का सेमी एलाय है। लेकिन सेमी एलाय का मतलब तो ये नहीं होता कि अगर जापान किसी कंट्री के साथ, किसी देश के साथ युद्ध करता है तो वो देश जो है वो भी उसमें शामिल हो जाए। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में जो आपसी सुरक्षा की कोई संधि हो, ऐसी संधि तो कोई नहीं है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का ऑस्ट्रेलिया में मानना है कि अगर ऑस्ट्रेलिया जापान से सुरक्षा के मामलों में संबंध बढ़ाता रहता है तो ये नौबत आ सकती है कि ऑस्ट्रेलिया और जापान कहीं फुल फ्लेज्ड पूरी तरह से मिलिट्री एलाइज ना बन जाए, और अगर एलाइज बन जाते हैं तो एलाइज का तो मतलब ये हो जाता है कि भाई आप एक दूसरे की सुरक्षा में जो है सहयोग देंगे। तो कुछ विशेषज्ञों का ऑस्ट्रेलिया में ये मानना है कि ये ऑस्ट्रेलिया को बड़े संभल के सुरक्षा के मामलों में जापान के साथ संबंध बनाने में बड़े संभल के कदम लेने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे हम जापान के साथ एक फॉर्मल अलायंस भी कर लें या एक सुरक्षा के मामलों की एक संधि भी कर लें।
क्योंकि अगर ऐसी कुछ मिलिट्री डील हो जाती है जिसकी तरफ आपने अभी इशारा किया है, तो क्या चीन की तरफ से भी तनाव की स्थिति बन सकती है? क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच में इस बात पर तो विचार विमर्श हो सकता है कि जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में जो शक्ति के जो समीकरण बदल रहे हैं उसको कैसे संभाला जाए।
देखिए अनीता जी, सिर्फ एशिया पैसिफिक नहीं बल्कि आजकल हमारे दोनों देशों के नेता, जापान के भी और ऑस्ट्रेलिया के और साथ में इंडिया के भी और अमेरिका के भी नेता आजकल एशिया पैसिफिक जो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको यूज नहीं करते हैं, इसकी जगह इंडो पैसिफिक यूज करने लगे हैं। और चीन इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट से भी काफी नाराज है, चीन को ये कॉन्सेप्ट पसंद नहीं है। इंडो पैसिफिक से ये होता है कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, जो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर है, दोनों को मिलके एक साथ एक तरह से एक स्ट्रेटेजिक थिएटर देखा जाता है। और साथ साथ उसके इंडिया भी इसमें शामिल हो जाता है, क्योंकि पहले जो एशिया पैसिफिक कॉन्सेप्ट थी उसमें इंडिया शामिल नहीं था। तो इंडो पैसिफिक कहने से इंडिया, इंडोनेशिया वगैरह सब इसमें शामिल हो जाएंगे। तो इंडो पैसिफिक की जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया के बीच में काफी जो है प्रगति हो रही है, और चीन उससे खुश नहीं है। और आपने जैसे कहा कि अगर ये ऑस्ट्रेलिया और जापान के संबंध बढ़ते हैं, खासतौर से सुरक्षा के मामले में, तो चीन उससे खुश नहीं होगा। बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आज जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के बीच में ये सुरक्षा समझौता, ये डार्विन की हम लोग जो बात कर रहे थे, इसके मामले में कोई प्रगति होती है तो जापान, चाइना उसकी भी निंदा करेगा, तो कल चीन उसकी भी निंदा करेगा। तो अगर संधि की बात होती है तो चीन बहुत नाखुश होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर चीन नाखुश होता है तो ऑस्ट्रेलिया को जापान के साथ अपना संबंध नहीं बढ़ाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो जो रीजनल जो सेंसिटिविटीज जिसे कहते हैं, उनका ध्यान तो रखना पड़ेगा, ताकि कहीं ऐसी मतलब नौबत ना आ जाए के युद्ध की संभावना बढ़ जाए।
क्या इस यात्रा के दौरान जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है, इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है?
जी, ट्रेड के मामले में तो बात हो ही रही है, क्योंकि जो देखिए आपको मालूम होगा, आपके श्रोताओं को भी मालूम होगा कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह इन देशों ने कुल मिलकर एक TPP ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, एक उस पर एक रजामंदी हुई थी
जी।
लेकिन इस दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति बन गए, तो उन्होंने उससे अमेरिका को विड्रॉ कर लिया है। लेकिन बोथ जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों के नेता चाहते हैं कि TPP बिना अमेरिका के भी चलती जाए, मतलब जो उस पर हस्ताक्षर हुए थे वो पूरी तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है बिना अमेरिका के भी हो जाए, उससे भी ऑस्ट्रेलिया और जापान को फायदा होगा। इतना फायदा नहीं होगा जितना अगर अमेरिका उसमें बना रहता तो होता, लेकिन फिर भी अमेरिका के बिना भी अगर TPP इम्प्लीमेंटेशन होता है तो ऑस्ट्रेलिया और जापान को व्यापारी मामलों में उससे फायदा होगा, उनकी जो अर्थव्यवस्था है उनको फायदा होगा
जी।
तो ट्रेड के मामले में तो TPP पर ज्यादा फोकस है
जी।
उसके अलावा जो नॉर्थ कोरिया का मुद्दा है उस पर भी बातचीत हुई है। आज सुबह भी मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री टर्नबुल ने कहा है कि जो जो युद्ध की कार्रवाई का या फौजी कार्रवाई का जो एक विकल्प है कोरियन पेनिनसुला में, वो हमें खुला रखना चाहिए। मतलब कि ठीक है, कोरिया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में बातचीत हुई है, ये भी एक समझौता हुआ है कि उत्तरी कोरिया के जो खिलाड़ी हैं वो जो अभी विंटर ओलंपिक्स आ रहे हैं साउथ कोरिया में, उसमें हिस्सा लेंगे, एक ये अच्छी बात है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर टर्नबुल ने ये कहा है कि इससे हम लोगों को ये नहीं भूल जाना चाहिए कि उत्तरी कोरिया के जो परमाणु हथियार हैं, एटॉमिक बॉम्ब जो उन्होंने बनाया है, उसको हमें नहीं भूल जाना चाहिए। और ये याद रखना चाहिए कि उत्तरी कोरिया के जो नेता हैं किम जोंग उन, वो एक दृढ़ संकल्प है उनका कि वो परमाणु हथियार बनाएंगे, और हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमें उनको ये हथियारों पर ज्यादा विकास नहीं करने देना चाहिए, बल्कि उनके जो ये हथियार है वो उनको खत्म करना है किसी तरह से
जी।
तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो युद्ध का विकल्प है या फौजी कार्रवाई का विकल्प है, इसको खुला रखना चाहिए
जी। प्रदीप जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।
थैंक यू अनिता जी।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।